सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम।
ओम शांति। बाबा हम सभी को संकल्प शक्ति का और उसी संकल्प शक्ति के द्वारा मनसा सेवा का महत्व समय प्रति समय समझाते रहते हैं। लेकिन ये संकल्प शक्ति क्या कमाल कर सकती है, उसके अनेक जीवंत उदाहरण आदरणीय छोटेलाल भाई जी के पास हैं। बहुत ही अच्छी आपकी यह विशेषता है कि जो आप मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को रोग मुक्त, कर्म भोग मुक्त, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे मिला वो सिखाते हैं, समझाते हैं, इसी विषय पर क्लास भी कराते हैं। आज हम सभी के बीच में आप उपस्थित हैं, हम आपका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय छोटेलाल भाई जी 39 ईयर से बाबा के हैं और लगभग 34 ईयर से 34 वर्ष से आपने अपना जीवन, बहुत छोटे थे तभी से बाबा के यज्ञ में समर्पित किया है। आपके लौकिक परिवार के भी बहुत सारे सदस्य बाबा के ज्ञान मार्ग में हैं। आप यहाँ पर मधुबन में सिक्योरिटी की सेवाएं देते रहते हैं और आपकी यह विशेषता के कारण ही आप यज्ञ के फेथफुल विश्वासु रत्न हैं। समग्र भारत देश में और नेपाल के भी कई शहरों में आपने योग भट्टी के द्वारा अनेक ब्राह्मण आत्माओं को लाभान्वित किया है। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय छोटेलाल भाई जी। भाई जी को सुनने से पहले मैं आप सभी से आज छुट्टी ले रही हूँ, कल सूरत में प्रोग्राम है, आज रात की ट्रेन है, लेकिन अभी ही दोपहर को हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए तो हमें यहाँ आने का और सेवा का मौका मिला, और आप सबने बहुत अच्छी डिसिप्लिन बनाए रखी जो हम बिल्कुल निर्संकल्प होकर के आपके साथ भट्टी कर सके हा? तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।
बहन जी को भी थैंक्स। ओम शांति। प्यारा बाप दादा, हम सब बच्चों को संपन्न बनाने के लिए समय प्रति समय ज्ञान के भिन्न भिन्न रत्नों से सजाते रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बनकर अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। भाई बहन जी एक बोल रही अनाउंसमेंट है कि जिनको 1 बजे सोलापुर वालों को जाना है वो अगर यहां बैठे हों तो बाहर जाएं। वो यहां नहीं है बहन जी, ये हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, सामान रखा है उधर ही। हाँ अनाउंसमेंट तो किया ना अभी। हाँ। कोई बात नहीं। तो प्यारा बाप दादा, हम सभी को वर्तमान समय एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते बनेंगे। और इन सभी का आधार है हमारे मन के श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, पावरफुल विचार। तो एक श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाएं, अथवा कहें कि हम अपने संकल्पों को इतना पॉजिटिव पावरफुल बना दें तो उनमें जो हम सोचें वही सिद्ध हो जाए, इसका भी आधार श्रेष्ठ स्थिति बनती है। बाबा के शब्द हैं कि बच्चे यदि स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जब किसी के भी सामने कोई परिस्थिति समस्या आती है तो ज्यादातर भाई बहने अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति की सीट से नीचे आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। अगर हम सदा ही श्रेष्ठ स्वस्थिति में स्थित होकर चलें तो अनुभव यही कहता है कि परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। एक छोटा सा अनुभव, हम अभी दिसंबर जो मास बीता है उसमें गए थे हम तिनसुकिया भट्टी कराने के लिए। तो दिसंबर जनवरी में आप सभी सुनते होंगे समाचारों में दिल्ली और आसपास में बहुत धुंध कोहरा रहता है, जिसके कारण ट्रेन प्लेन बहुत लेट हो जाते हैं, कई कैंसिल भी हो जाती हैं ट्रेनें। तो हमको भी दिल्ली, यहां से दिल्ली जाके दिल्ली से आसाम की ट्रेन पकड़नी थी, तो हम भी ऐसा सुन रहे भाई समाचारों में कई ट्रेन प्लेन कैंसिल हो गए, कई देरी से चल रहे हैं। तो मैंने यहां खड़े खड़े ही बगीचे में खड़े होकर एक प्रयोग किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूं, और हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं। और दिल्ली में 9 दिसंबर और 23 दिसंबर को मौसम ठीक रखने में आपके सहयोग की कामना करते हैं, ऐसा पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर और प्रकृति को दान दिया। 2 मिनट 2 बार ऐसे प्रयोग किया। यहां से हम 8 दिसंबर को निकले, 9 को सुबह दिल्ली पहुंचे, वहां एक भाई स्टेशन पर लेने आए तो वो कहने लगे भाई जी देखो यहां कल तक बहुत धुंध कोहरा था, आज ही मौसम क्लियर हुआ है। वहां से फिर आसाम पहुंचे जी तिनसुकिया, वहां अलग अलग जगह 2-3 जगह भट्टी थी और अलग अलग सेंटरों पर क्लासेस थे, लास्ट भट्टी थी हमारी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो वहां एक दिन की भट्टी करा के दूसरे दिन मॉर्निंग में 6 बजे वहां से निकलना था। तो 6 बजे जोर की बरसात शुरू हो गई, फुल फोर्स से बरसात, गाड़ी थोड़ा सेंटर से दूर खड़ी। अब फुल फोर्स की बरसात में ऐसे ही जाओ छाता लेकर तो नीचे से तो आधा ऐसे ही भीग जाएगा व्यक्ति। तो वहां भी फिर हमने यही प्रयोग किया, बरामदे में खड़े होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूं, और हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन अभी 10 मिनट के लिए बरसात बंद रखने में आपके सहयोग की कामना करते हैं। ऐसे 2 मिनट खड़े खड़े जैसे कि पावरफुल वाइब्रेशन दिए बाबा से लेकर, और वो बरामदे से घूम के मैं ऐसे कमरे में आया हूं, 1 ही मिनट हुआ 1 मिनट में मैं फील करता हूं कि बरसात धीमी हो गई है और 3 मिनट के अंदर तो कंप्लीट बंद भी हो गई बरसात। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने कहा और उसने मान लिया, जैसे कि वो खड़ी खड़ी सुनी रही थी है। तो जहां स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए हम सदैव अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाकर रखें। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बनते हैं हमारे मन के श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, पावरफुल विचार। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बना दें तो निश्चित रूप से हम जो चाहेंगे वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि हम जो बनना करना चाहते हम वही सोचें। गीत में भी सुना ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे हैं। बहुत बार सुना हो गया गीत, लेकिन इसके एक एक शब्दों पर हम ध्यान देकर चलें। हमने लक्ष्य तो रख लिया बाप समान बनने का, फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हों धंधे दोरी के, दुनिया भी इधर उधर के, तेरी मेरी के, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हमने जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार, वैसे ही चिंतन, वैसे ही संकल्प हमारे अंदर चलने चाहिए, और उस लक्ष्य को बार बार हम अपने सामने लाएं तो निश्चित रूप से वैसा बनते चले जाएंगे। एक छोटा सा अनुभव, मैं हर बात के पीछे का आपको एक एक अनुभव सुनाऊंगा ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इजी हो जाए आपको वैसा बनना करना। एक भाई ने पूछा हमारे से, भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या है जी? कहने लगे कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। बच्चे भी ज्ञान में चलने वाले, माँ बाप भी ज्ञान में चलने वाले। अब हमने पहली बार ही सुना ऐसा कोई ज्ञानी आत्मा ज्ञानी के साथ ऐसा व्यवहार करे, वो भी अपने माँ बाप के साथ। हम तो सोचने लगे भाई इनको क्या जवाब दिया जाए। तो दो मिनट बाबा को याद कर कहा बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो उससे पूछा तो याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट सोचकर वो कहता है कि हाँ हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, ये ध्यान देकर चलने की बात है कि हम जो बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो हम नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, अर्थात वैसा बनने करने की शक्ति है हम जो भी सोच रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म और ध्यान देने के देकर सुनने की है कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, कैसा कौन सा है, हर एक अपने आप को चेक करना कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हर एक अपने आप को चेक कर ले कि हमने जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार वैसे ही संकल्प हमारे मन में निरंतर आते रहते हैं, या कुछ और भी लक्ष्य तो रख लिया, जैसे मैंने बताया ना हमने लक्ष्मी नारायण बनने का है, और विचार चल रहे हो इधर उधर के तेरी मेरी के, तो कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार निरंतर अपने अंदर हम बनाए रखेंगे, मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, है? तो निश्चित रूप से जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को समझें, उसके महत्व को जानें। हमारे एक एक संकल्प में एक असंभव को भी संभव करने की शक्ति है, कैसी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने की शक्ति है। जैसे जैसे हम अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंचते जा रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प के अंदर वो सिद्ध होने की पावर शक्ति आती जा रही है। अगर मान लो वैसे एक श्रेष्ठ स्थिति में कमजोर नेगेटिव संकल्प आने की मार्जिन कम होती है, लेकिन अनेक जन्मों का संस्कार है तो गलती से अगर नेगेटिव कमजोर संकल्प आ गया तो स्थिति श्रेष्ठ महान है, इसलिए उसमें भी सिद्ध होने की पावर है। अगर वो नेगेटिव संकल्प सिद्ध हो गया तो वहां एक समस्या खड़ी हो जाएगी, और पॉजिटिव संकल्प सिद्ध हुआ तो वो एक आगे बढ़ने का, इस श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बन जाएगा। तो कैसे एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर असर डालता है, बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात की ओर जाता है। कि जो हमारे मन में संकल्प विचार चल रहे हैं उनका हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। एक छोटा सा अनुभव पहले मैं सुनाता हूं, एक नेगेटिव संकल्प का अनुभव, ताकि हम अपने विचारों को नेगेटिव व्यर्थ होने से बचा सकें, पॉजिटिव पावरफुल बना सकें। क्योंकि हमारी स्थिति, हम संपूर्णता के समीप पहुंच रहे हैं ना, तो हर बात में सिद्ध होने की शक्ति आती जा रही है हर संकल्प में। तो एक व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया बाहर का कोई, तो कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी। ये समाचार टीवी पर पेपरों में आ गया, ये समाचार एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को पता चला, तो उसने सोचा कि फलानी डेट को फलाने व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जा रहा है, तो क्यों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मैं इस व्यक्ति को अपने पास ले लेता हूं, मैं भी इसको मारूंगा लेकिन कुछ प्रयोग करके मारूंगा ताकि दूसरों के लिए कुछ नई चीज निकल आए। इसको लक्ष्य को लेकर उसने, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने उसकी अर्जी को मंजूर किया, लेकिन दो शर्त रखी कि हम इस व्यक्ति को आपको देंगे लेकिन एक तो पुलिस हिरासत में ले जाना होगा और दूसरी शर्त थी कि आप कुछ भी प्रयोग करो लेकिन इसको मारना जरूर है क्यों कोर्ट का आदेश था। तो उसने दोनों शर्त मंजूर की और दो पुलिस वाले भी उसके साथ आए और दो व्यक्तियों को बुला लिया, एक डॉक्टर और एक आम व्यक्ति को, और सभी एक पांच छह लोग बंद कमरे में बैठ गए। तो जिस व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जाना था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा, देखो भैया हम आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे लेकिन हमने एक ये जो बैग रखा है ना, इसमें एक सांप को पकड़ के रखा है और सांप को आपके पास ला के छोड़ेंगे और सांप आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको पहले से ही बता दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो सांप को देखकर डरे नहीं। और फिर जो एक दूसरा व्यक्ति बुलाया हुआ था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि भाई जाओ वो बैग को उठाओ और इसके पास लाके सांप को छोड़ दो। वो व्यक्ति गया, उसने बैग उठाया, उसके पास लाकर उसकी चेन खोली और कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया था, उस बैग में कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी तो आंखें तो बंद थी, कानों से जरूर सुन रहा था। तो इतना कहने के बाद मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उस व्यक्ति के पास गया और उसके पैर में से हल्के से पिन चुभो दी और पिन चुभोने के बाद उसको लगा कि मेरे को अभी सांप ने काट खाया है, अब मैं मर जाऊंगा। बस ये संकल्प उसके मन में धीरे धीरे गहराई तक समाता चला गया और 15 मिनट के बाद उसके मुख से झाग निकलने लगे और आधा घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद जो एक दूसरा डॉक्टर बुलाया हुआ था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि अभी आप इसके शरीर का थोड़ा सा खून लेकर चेक करो। तो उसने उसके शरीर का खून लेकर चेक किया तो उसने पाया कि उसके सारे खून में सांप का जहर कहां से आ गया, सांप ने तो उसको काटा ही नहीं था, कहां से आ गया, संकल्प के द्वारा। तो देखो एक नेगेटिव संकल्प में जब इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव संकल्प का। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस संकल्प को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर उसने एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के एक की सेवा करनी है, मुझे कंप्लीट इस कैंसर की बीमारी से मुक्त होना है। इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों को लेकर वो चलते रहे, जो भी दवाई गोली थी कराते रहे और ज्ञान योग करते रहे। तो देखो ये नियम है कि हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के बॉडी के सेल, शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल से बनते रहते, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। आप में से यदि कोई डॉक्टर नर्सेज होंगे तो वो इस बात को जानते होंगे। तो जब उसने, और नए सेल्स का निर्माण बॉडी में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प करें वैसे बॉडी में सेल्स, शरीर में सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया कि नहीं मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान की यज्ञ की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो उसके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर निकलते चले गए, खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स खत्म होते गए। और इस बात को आज 11 साल होने को आए हैं, वो व्यक्ति आज तक जिंदा है, बाबा की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली थोड़ा बजानी हो तो जोर से बजाइए। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही कि कईयों को समय थोड़ा सा ऐसा है ना, तो सुनते सुनते वाणी से परे चले जाते हैं, तो जब ताली बजती है तो क्या होता है, हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट दबते हैं, पॉइंट दबने से एक्टिवनेस आ जाती है, अलर्टनेस जाती है, चुस्ती आ जाएगी और सुस्ती खत्म हो जाएगी, तो आप क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो जहां आपको लगे कि जरूरत है तो वहां जरूर ये काम करें। इसके साथ साथ तो इस तरह से आपने देखा एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है, तो हम अपनी संकल्प शक्ति को नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें, तो फिर हम जो सोचेंगे, जो हमने जीवन में लक्ष्य रखा है वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सहज ही एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक सोमान इमर्ज कर ले, ऐसा सोमान जिसकी स्मृति याते ही नशा चढ़े, शक्तियों की अनुभूति हो, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। जिनको अनेक कार्यों में सफलता पानी है, अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, या बीमारी से मुक्त होना है, तो अमृत वेले उठते ही वैसा सम्मान कम से कम 9 बार, उठते ही पहला संकल्प बाबा को गुड मॉर्निंग करो और दूसरा संकल्प यही करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपने अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, मैं मास्टर मैं परम पवित्र आत्मा हूं और पवित्रता मेरा निजी स्वरूप है, 9 बार ये संकल्प कर लीजिए। तीसरा, किसी बीमारी से अपने आप को मुक्त करना है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं और मैं सब बीमारियों से मुक्त हूं, 9 बार ये संकल्प कर लीजिए, निश्चित रूप से आप उस कार्य में सफलता पाएंगे। एक छोटा सा अनुभव, एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैंने 5 साल से बहुत बिजनेस चेंज करके देख लिया, मेरे को सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है और मेरे को बड़ा टेंशन हो गया है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा योग नहीं लगता है बाबा से, वही संकल्प विकल्प चलते हैं और मेरा दिल करता है मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा देखो ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना, आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उठते ही 9 बार ये संकल्प कर लीजिए। 3 महीने तक, पहले मैंने बताया 21 दिन तक करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, तो और मैंने कहा बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने करना शुरू किया, मैं मास्टर सर पहले बाबा को गुड मॉर्निंग किया, दूसरा संकल्प ये किया कि मैं मास्टर सर शक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, उठते ही 9 बार ये संकल्प किया और दिन में भी रात को सोते समय भी 1 दिन 3 बार 21 दिन तक। उसने ऐसा करना शुरू किया, पहले दिन किया कुछ पता नहीं चला, दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन और फायदा, चौथे दिन और फायदा, पांचवें दिन और फायदा, ऐसे करते करते जब उसको लगा कि इसका तो रिजल्ट मिल रहा है तो वो करता गया, करता 21 दिन तो पूरे हो गए, उसके बाद भी वो करता गया। उसने 3 महीने तक ये प्रयोग किया, 3 महीने में उसको 70% प्रोग्रेस हुई। तो आप सोचिए पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति। इसलिए हम जो भी बाबा ने सम्मान दिए हम सभी को, सम्मान तो सबको दिए ना बाबा, बाबा देखो अभी तो खैर ऐसी मुरलियां कमी चलती हैं, लेकिन आप 8-10 साल पहले की अव्यक्त वाणियों को उठाकर देखो तो जब बाबा मुरली स्टार्ट करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, आज बाप दादा लाइट हाउस माइट हाउस, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिल तख्त नशीन आत्माओं से मिलने आए हैं, हमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे सम्मान देते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि ऐसी आत्मा हो तुम। हम कानों से सुनते भी हैं, डायरी में नोट भी करते हैं, लेकिन मन स्वीकार करता है, भगवान जिस नजर से हमें देख रहा है हम अपने आप को वैसा समझकर चलते हैं। यदि हम पूरी तरह से वैसा अपने आप को समझकर चलें, मानकर चलें, तो निश्चित रूप से वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी और निश्चित रूप से हम वैसे बनते चले जाएंगे। बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं। जब किसी भी स्वमान का हम अभ्यास करके चलते हैं, उस स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उससे हमारे विचार महान बनते हैं। और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा एक कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को खत्म किया जा सकता है, एक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई ने पूछा, भाई जी मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। मैंने बाबा के ज्ञान में चलते थे, मैंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल होगा, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। मैं पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। मैंने पैसे दे दिए। पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, आपको हम ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। साथ साथ के बराबर के प्लाट थे दोनों। उसने कहा नहीं, बात तो इसकी हुई थी एक नंबर की। नहीं बोले, एक नंबर वाला नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर का देंगे। नहीं बोल, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को तो एक नंबर वाला ही चाहिए। बोल नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद ले जाना। 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प चले। तो बोल मेरे सामने ये समस्या, मैं क्या करूं। तो हमने उसको एक विधि बताई कि आप ये प्रयोग करिए। एक जिस आत्मा को, जिस आत्मा ने आपके पैसे लिए हैं वो तो पता है, तो अमृत वेले उठकर उस आत्मा को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इस तरह से पावरफुल वाइब्रेशन देना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और दूसरा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करना, और जिस समय आपका योग पावरफुल हो उस समय करना, अमृत वेले या शाम को, वो आपको डिसीजन लेना है किस समय अच्छा योग होता है। ऐसे में इनका 21 दिन प्रयोग करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने गया यहां से, जाने के बाद प्रयोग किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए हैं, और मैं इनका यह भी संकल्प करना जिस समय प्रयोग करें कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापिस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प मैं इनका जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। ठीक है, उसने ऐसा ही किया। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो करता गया करता गया योग। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो आप सोचिए, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। अब आप ऐसे अनुभव सुनने के बाद आपको भी लगेगा, छोटी मोटी समस्या कईयों के सामने होती है, भाई हम भी ऐसे प्रयोग करें। जरूर प्रयोग करो, लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। यदि उन 5 बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात कि हमारा 1 दिन का योग का चार्ट, अमृत वेले से रात्रि तक 1 दिन का योग का चार्ट कर्म करते बैठ के दोनों मिलाकर कम से कम 4 घंटे का तो अवश्य होना ही चाहिए, तो आप सफल हो सकेंगे अनेक कार्यों में। ये बात भी मैं ऐसे नहीं बता रहा, इसके पीछे भी एक राज है। एक ऐसा ही छोटा सा अनुभव, हम वहां आंगन में बैठे होते हैं, सिक्योरिटी की सेवा होती है, तो एक माता मेरे पास आई सेवाधारी, भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। अब मेरे को उस दिन भी कहीं बाहर जा रहा था मैं भट्ठी कराने, तो मैंने कहा माता जी ऐसा है मैं 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं भट्ठी के लिए, तो आप ऐसा करो कि 5 दिन तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। ठीक है, मैं बाहर चला गया, माताजी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। 5 दिन के बाद जब मैं आया तो मिलने के लिए आई माताजी, तो पूछा बोलो माताजी क्या समस्याएं हैं। तो माताजी कहती है भाई साहब मेरी कोई समस्या ही नहीं। तो समस्या कहां है क्यों है, जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं था कि उसकी समस्या कोई सब 5 दिन में खत्म हो गई थी, नहीं, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन जो उसका पुरुषार्थ का लेवल है वो समस्याओं के लेवल से ऊपर हो गया, अधिक हो गया, तो उसको वो बातें समस्या समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रह गई। इसलिए तो बाबा ने कहा ना कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ता। तो पहली बात तो कि एक दिन का हमारा योग का चार्ट 4 घंटे का अवश्य हो। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारी मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। तीसरी बात, निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर बैठ के एक ही समय रोजाना योग करें, जितने भी दिन आपको करना हो, 31 दिन 21 दिन। चौथी बात, जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया, कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूं या परम पवित्र आत्मा हूं, कहीं शक्ति की आवश्यकता तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, माना जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें तो फिर सफलता मिलेगी। पांचवी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए श्रेष्ठ स्थिति, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है, शक्तिशाली स्थिति, तो आप योग के प्रयोगों में सफल हो सकेंगे। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली ये स्थिति बनाने के लिए, अथवा कहेंगे कि योग के चार्ट को 4 घंटा, या जिनका कम भी है तो उसको बढ़ाने के लिए, या जिनका उतना है तो उससे अधिक बनाने के लिए, अधिक से अधिक योग का चार्ट बनाने के लिए, या कहेंगे कि सहज निरंतर योगी बनने के लिए, या तीव्र पुरुषार्थी करने के लिए, या मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, ये 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना करके चले। जिनको कम समय में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है, ये 3 अभ्यास अभी से ही और रोजाना करें सभी। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए। यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे, आप कहेंगे जी हम घर में तो 2 या 4 ही होते हैं, आप रोड पर खड़े हो जाओ कितने लोगों को देख सकते हो। तो आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, अधिक देखेंगे तो बहुत अच्छा बात है। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जब भी संकल्प आए अशरीरी बन गए, देह और देह की दुनिया से न्यारे डिटैच हो गए, बिंदु बन जाओ, कम से कम 50 बार, ज्यादा जितनी बार भी कर सको। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। ये 3 अभ्यास आप रोजाना करके चलेंगे तो फिर आपको वहां योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे सहज योग का अनुभव करेंगे, एक सहज पावरफुल स्थिति बन जाएगी। इस तरह से एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहें, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अगली पॉइंट, हम व्यर्थ से कंप्लीट अपने आप को मुक्त बनाएं। व्यर्थ के विचारों के कारण बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ चलता है? जब मन को हम खाली छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना। आप ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो सुनेंगे जो देखेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं मन तुरंत वैसा संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं कि तुम्हारा देखना और सोचना ये दोनों संपूर्ण बनने का आधार हैं या फिर शिकायत करने का भी आधार है। क्योंकि यदि दृष्टि आत्मिक है तो उसके द्वारा ऑटोमेटिक आपके विचार महान श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे, और विचार जहां श्रेष्ठ है तो स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगी। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाती है। और यदि दृष्टि अवगुणी है, दैहिक है, तो ऐसा व्यक्ति एक दूसरे की कमी कमजोरियों का ही वर्णन करता रहेगा सारा दिन, तो व्यर्थ के विचार चलने का आधार बन जाएगा, कारण बन जाएगा। तो हम कभी भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ें, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, अभ्यास करना, ये सब चीजें पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो इस तरह से हम व्यर्थ से अपने आप को मुक्त बनाएं। और बाबा के ही शब्द हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी, ये बाबा के शब्द। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, वो कुमार भाई, पहली बार वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया। तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे तो उनके मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं है। तो उनका भी फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसी थोड़ी हलचल है व्यर्थ के विचारों की, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे हमें। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है या याद किया है वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, वो गया सफेद कपड़े पहन के बैज लगाकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। पहुंचा तो इंटरव्यू देने के लिए, दो बुजुर्ग से लोग वहां इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे, तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते, अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोल, फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। कॉमेंट्री पूरी हो गई है फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने दोबारा बोला, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो वो कहता है, मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले, गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का एक गीत है, गीत पूरा हुआ फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। फिर दोबारा उसने 5 मिनट के बाद बोला, साहब अभी गीत पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला, आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये है समर्थ संकल्पों की कमाल। तो इसलिए कभी भी कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों नहीं आए, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें, सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब बाप समान बने, निरंतर योगी बने। तो देखो ये नियम है, जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख कर चलते हैं, उनके सूक्ष्म में वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचते हैं, और वो आत्मा भी हमारे प्रति फिर वैसी भावना रख के चलेगी जैसा हम उसके प्रति रख के चल रहे। एक व्यक्ति मान लो आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, डिसरिगार्ड करता है, आपका अपमान करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावना या बदल जाती है? ज्यादातर भाई बहन उसके यही सुनने को मिलता है कि बदल जाती है, बहुत थोड़े लोग कहते हैं कि रहते हैं। तो देखो ये नियम, जैसे मैंने बताया कि यदि मान लो हमारी भावनाएं बदल गई, नेगेटिव होगी, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और वो आत्मा भी हमारे प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन रखेगी, अपने मन में नेगेटिव विचार रखेगी, तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघटन रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार हमारे से क्यों नहीं करे, लेकिन हमें अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलनी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हम सबको टाइटल दिया, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी किसको कहेंगे? जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना रहती हो। तो जहां हम अपने मन में और क्यों भावनाएं बदलती हैं और कैसे रहेंगी निरंतर शुभ भावनाएं, जब हम एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते हैं, अवगुण की तरफ नजर जाती है, तो गलत व्यवहार को देखकर भी भावनाएं बदलती हैं। इसलिए वहां पर आवश्यकता है ज्ञान को सदैव इमर्ज रूप में रखकर चलने की। उसने अपना काम किया, जैसा व्यवहार किया, मेरा काम क्या है? हरेक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चले। कैसे रहेंगे और शुभ भावनाएं? किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, चुक तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है। तो ऐसे ज्ञान की कई ऐसी पावरफुल पॉइंट्स हैं। दूसरा ये भी याद कर सकते हैं कि ये बात बड़ी या बाप बड़ा। एक व्यक्ति के दो शब्द सुनकर हम अचल में आ जाते हैं, और बाबा रोजाना जो चार पेज की मुरली सुनाता है उसे सुनकर कई बार भूल जाते हैं। तो सोचने की बात है, वो बात बड़ी या बाप बड़ा? सब कहेंगे बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता है उस समय? बात बड़ी हो जाती है। तो वहां आवश्यकता है ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलने की, ज्ञान स्वरूप बनकर चलने की। तो बाबा ने ज्ञान में हमें एक एक ऐसी पावरफुल ज्ञान के एक अस्त्र शस्त्र दिए हैं, यदि समय पर आपकी बुद्धि में वो आ जाए पॉइंट, तो एक सेकंड में आप बड़ी से बड़ी समस्या को पार कर सकते हैं, उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो ऐसे हम निरंतर शुभ भावनाएं बनाए रख सकते हैं हरेक के प्रति, और जहां हमारे मन में निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रहती हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य आपके मुख्य बोल से नहीं हो पाता, वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, कई ऐसे भाई होंगे जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती और विरोध करती हैं। तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, विघटन डालता है, तो कैसे आप शुभ भावनाओं के प्रयोग से उस आत्मा की मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं, सुनिए अनुभव। एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, वो यहां आए बाबा से मिलने के लिए। एक रात ऊपर भी पांडवन में रुकने के लिए आए, तो हमें क्लास के बाद हमारे से मिले, कहा कि भाई जी मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो, चाहे वो आपकी युगल कितना भी विरोध करे, लेकिन यदि आपने उसको परिवर्तन करना चाहते हो तो दो बातों का पालन करके चलना आज से ही बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो वो कितना भी आपका विरोध करे, कैसा व्यवहार करे, लेकिन आपने अपने मन में कंप्लीट उसके प्रति एक तो शुभ भावना शुभकामना रख के चलना होगा। दूसरी बात, कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या प्रयोग करना है, वो मैं बता रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन बिल्कुल शांत और खाली होता है, तो उस समय जिस भी आत्मा को हम सब भावना के वाइब्रेशन देंगे, से बात करेंगे, तो उस तक वो पहुंचते हैं। उस आत्मा का अंतर्मन शांत और खाली है तो सहज ही उन विचारों को या वाइब्रेशंस को कैच कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे। ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका, इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, ये किसी के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, चाहे कोई ज्ञानी है अज्ञानी है, चाहे वो आत्मा उस समय सोई है या जगी है, इससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रयोग अमृत वेले ही करना है। दूसरा प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो उस आत्मा को अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और उससे इस प्रकार से शुभ भावना के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें कि वो विरोध करती थी। और मैं इनका ऐसे 7 दिन अमृत वेले योग में शुभ भावना का प्रयोग करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो गए यहां से, बाबा से मिलकर गए अपने घर जाकर और अपनी युगल को अमृत वेले सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी हो। और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें कि वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्टी थी, तो उसने सोचा कि आज तो योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया शुभ भावनाओं को, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कुछ असर हुआ या नहीं शुभ भावनाओं के प्रयोग का। गया युगल के पास, कहा देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आपको हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। तो जो रोजाना इतना विरोध करती थी वैसे छुट्टी मिल गई, जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गए इतना बड़ा परिवर्तन, उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावनाओं के अंदर। तो आप में से भी किन्हीं के भी सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और जब हमको दूसरों से शुभ भावना युक्त व्यवहार मिलेगा तो फिर हम जो चाहते हैं वैसी स्थिति बनाना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलें। देखो आज हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी को कुछ बोल सकता है, कह सकता है, हम किसी को कहने करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हमको बाबा ने ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, समझ दिया, उस आधार से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं तो वहां सहज स्थिति हलचल में आती है। क्या है बातों को महत्व देना, कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा। अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, मैंने बताया ना, कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है। अब जहां उस बात को आपने पकड़ कर बैठ गए कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, तो दूसरों को बदलना तो आपके बस की बात नहीं है, जब तक वो आत्मा ना चाहे परिवर्तन करना। और आपके पुरुषार्थ की गाड़ी वो क्यों कोई पकड़कर वहां बैठी हुई है कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा। और समय तो ऐसा ही पूरा होने को जा रहा है, यदि हम क्या क्यों की बातों में उलझे रहे तो एक बहुत वैल्यूएबल समय को ऐसे ही वेस्ट गवा देंगे। इसलिए हमें बातों के जाल में नहीं जाना है। बातें तो आएंगी, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, सब यहीं चुकते होना है। कई सोचते ना कि मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं, अच्छा मैंने तो गलत व्यवहार किया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे सामने इतनी विघन परिस्थितियां क्यों आ रहे हैं। कई ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, पहले सब कुछ ठीक था, तो ज्ञान में चलने के बाद ही बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। तो ये देखकर भी कईयों को संशय आने लगता है, पता नहीं ज्ञान में आने के कारण तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसे होता है। अब देखिए आप, अनेक जन्मों का 84 जन्मों का हिसाब किताब है और वो सब चुकतू करना है इसे एक जन्म में, तो होगा क्या फिर। जब विघ्न परिस्थितियां जल्दी जल्दी आएंगी तभी तो चुकतू होगा ना। तो उन्हें देखकर हमें घबराना नहीं है, हम अपना इंतजाम करके चलें। अब देखो बरसात हो रही है तो आप ये संकल्प करेंगे कि भाई बरसात क्यों हो रही है, बरसात का समय तो बरसात तो हो गई ना, हम अपना इंतजाम कर लें, रेनकोट ले लें, छाता ले लें, तो बात खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही समस्या बातें परिस्थितियां आएंगी, हम अपना इंतजाम करके चलें। ज्ञान स्वरूप बन के चलें, ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलें, अपने सिरे स्वमान में रहें। ये जो बातें मैंने अभी सुनाई, इन सब बातों को अपनी बुद्धि में रख के उनका प्रयोग कर चलें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जहां बातों को महत्व देते हैं तो वहां कैसे स्थिति हलचल में आती है, और जहां ज्ञान योग का स्वरूप बन के चलते हैं तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक युगल थे और एक उनका बच्चा था, तीन ही थे उस परिवार में, बहुत ही तीनों ही ज्ञान में चलते थे, अच्छे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी, आत्मा, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। तो चलते चलते वो माता के मन में एक प्रश्न उठने लगा धीरे धीरे कि हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, तो घर में बहू होनी चाहिए। लड़का बड़ा था तो लड़के को माता जी ने बोला बेटा आप शादी करो। लड़के ने मने कर दिया, क्योंकि तीनों ही ज्ञान में चलते थे, मने कर दिया। एक बार कहा, दो बार कहा, मने कर दिया, तो तीसरी बार माता जी कहती है कि यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो जब यही बात माता जी ने दो तीन बार कही तो फिर लड़के का भी संकल्प चलने लगा कि भाई मेरे कारण माता जी आत्महत्या करे तो ये तो ठीक नहीं है, चलो माता जी ने इतनी पालना की है, बड़ा किया है, योग बनाया है, तो माता जी की बात मान लेते। तो लड़के ने शादी कर ली। शादी कर ली तो जो घर में बहू आई वो बहुत ही तेज और तराट, बस उसी दिन से सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रोजाना का लड़ाई झगड़ा होने लगा। जितना सुख शांति थी घर में सब दुख शांति में बदल गई। टेंशन, माताजी बड़ी परेशान। तो लड़के को बोला, बेटा आप इसको समझाओ बहू को। तो लड़का कहता है, माताजी मेरे को तो बहू की जरूरत थी ही नहीं, बहू तो आपको चाहिए थी, अभी आप उसका सुख लो हैं, क्योंकि उसने जबरदस्ती कह के शादी कराई। तो माताजी बड़ी परेशान। अब आप ध्यान से सुन लेना, कई ऐसे माताओं के मन में संकल्प आते हैं, हैं? हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या होता है आप सुनना अनुभव है। तो माताजी बड़ी परेशान। तो क्लास के बाद आपस में मिलते हैं तो किसी को अपनी समस्या बताई, किसी भाई या बहन को माताजी ने, भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं। तो ये योग के प्रयोग किया, संकल्प शक्ति के अनुभव की क्लास हमारी सुनी होगी किसी ने, तो उस भाई ने हमारा नंबर माताजी को दे दिया। माताजी का फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं, मेरे कोई विधि बताओ। तो हमने जो माताजी को बात बताई वो माताजी के लिए नहीं, हम सबके साथ लागू होती है बात। आज हम सबके सामने जो भी विघ्न परिस्थिति समस्याएं बातें आ रही हैं, वास्तव में उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वो हम स्वयं हैं। वो मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का परिणाम है, और मुझे ही चुकतुक करना है। इसलिए आप खुशी खुशी चुकतुक करो या परेशान दुखी होकर करो, चुकतुक तो आपको ही करना है। तो हमने वो माताजी को कहा कि माताजी देखो, आपके घर में जो आत्मा बहू बनकर आई है तो जरूर किसी न किसी जन्म में आपने उसको तंग किया होगा, तो वो बदला लेने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि बिना कर्म के हिसाब किताब के तो कुछ होता नहीं है ना। तो अब तक दो तरीके तो आप लोगों ने सुने होंगे हिसाब किताब चुकतु करने के। सबसे सुंदर तरीका तो है योग बल जमा करो। अगर योग में बल नहीं है, योग साधारण है, तो साधारण योग से हिसाब किताब चुकतु नहीं होते, उसके लिए चाहिए पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप, बिंदु रूप स्थिति का योग। और वो ऐसा योग कैसे बने, उसके लिए जो मैंने तीन अभ्यास बताए वो करके चले। तो और आपने देखा होगा कई भाई बहने आज भी ऐसे हैं जो 50 60 70 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वैसे के वैसे ही है। क्यों पुरुषार्थ में प्रोग्रेस नहीं होती, क्यों चढ़ती कला नहीं होती, क्योंकि योग साधारण है। सब कुछ कर रहे हैं, वो अमृत के लिए उठते हैं, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, लेकिन अगर योग साधारण है तो साधारण योग से विकर्मों का विनाश नहीं होता, साधारण योग से संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता, और पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इसलिए हम अपने योग को पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, तो उससे हिसाब किताब चुक्त होंगे। दूसरा, अगर योग बल नहीं है तो फिर शारीरिक कर्म भोग के रूप में चुकतु होते हैं। लेकिन एक तीसरा भी तरीका है जो हमने खुद ही प्रयोग किया और कई लोगों से करवाया है। वो तरीका यह है कि जो आत्मा आपको दुख दे रही है, विघ्न डाल रही है, तंग कर रही है, उसके साथ जरूर आपके कर्म का हिसाब किताब है, तो उसको चुकतु करने के लिए अमृत वेले योग में 7 दिन उस आत्मा को सूक्ष्म में इमर्ज कर उससे मनी मन क्षमा मांग लो, माफी मांग लेना। उस माता जी को हमने ऐसे बताया, मैंने कहा आप अपनी बहू को सूक्ष्म में इमर्ज कर उससे 7 दिन माफी मांग लेना योग में, भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना, और मैं इनका बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। और उस माता जी ने ऐसे किया, अपनी बहू को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे 7 दिन माफी मांगी, क्षमा मांगी, और 8वें या 9वें दिन उसकी बहू माता जी के पास आती है और कहती है कि माता जी मैंने आज तक आपको बहुत तंग किया, लेकिन आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो गया। तो आप में से विकिनों के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम, एक तो जो मैंने बताया सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें, और दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ, तो आप अनुभव करेंगे कैसे कि कोई दिल से कोई व्यक्ति आपका साथी बन के साथ दे रहा हो। ऐसे हर कदम में भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाएगा, और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। बाबा ने खुद कहा है कि बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति क्यों नहीं तुम्हारे सामने आए, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे कि मीठे बाबा प्यारे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। याद है ना सबको ये मां बाप। तो जब सोचिए भगवान इतनी बड़ी ऑफर हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसका लाभ लें, फायदा उठाएं। तो इस तरह से कहीं भी बड़ी से बड़ी समस्या भी वहां सूली से कांटा हो जाएगी, सहज होती चली जाएगी। कोई कार्य आपने किया हो और फिर से वो करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, सहज हो जाएगा। लेकिन कोई सेवा आपको ऐसी दे दी जाए जो कि कभी आपने की नहीं हो है? और तो आप सोचेंगे ना मैं ऐसे कैसे करूंगा है? लेकिन यदि आपने ना कर दिया तो देखो बाबा की सेवा तो किसी के बिना रुकने वाली नहीं है, उसका भाग्य और किसी को मिल जाएगा। और यदि हां कर लिया तो कराने वाला बाबा है वो भी आपसे करवा लेगा। इसलिए कभी भी बाबा की सेवाओं में ना नहीं करना है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। तो क्यों, कराने वाला वो है, हमें और आप सबको तो निमित्त बन के पाठ ही बजाना है। तो जहां सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर चलते हैं तो वहां कैसे अनेक असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, मेरा स्वयं का ही अनुभव है ये। तो उस समय हमारे को क्लास कराने का भाषण करने का जरा भी अभ्यास नहीं था, कभी स्टेज पर खड़े होकर 2 शब्द भी किसी के आगे नहीं बोले थे। तो उस समय मधुबनी था जो था, तो सभी दादियां यहां रहती थी, तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है, हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना ना किया, क्योंकि भाषण करना कभी किया ही नहीं है, करना आता ही नहीं तो कैसे हाँ करें है? और दादी ने कहा तो ना भी कैसे करें है? तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा है? तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम्हें कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट स्मृति मादे थोड़ा शक्ति आ गई, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भाषण किया सफलता पाई है, और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो कल पहले की स्मृति इमर्ज होते ही जैसे कि थोड़ा शक्ति आ गई, पावर आ गई, और ये भी याद कर कहा बाबा को कि यदि कुछ नहीं भी आएगा तो हम बाबा को याद कर कहेंगे बाबा आप ही आओ, आप ही भाषण कराओ, बाबा करवाएगा, तैयार हो गई। प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे पहले से, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और उसका नाम रखा काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो है वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, और एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। बाबा का सीजन पहले तो यहीं चलता था ना, तो सीजन के समय की बात है तो ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, और जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है, सात बहनें सात भाई सब नए नए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया गया जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना है और उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हो कैसा सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ जी, तीन लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल कर देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है, है? अच्छा माइक के आगे खड़े हैं, सोचने का भी टाइम नहीं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाएं, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कहकर बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको दो शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया, भले हमारे कुछ भी नहीं आता हो, यदि हम बाबा को साथी बनाकर चलें तो हमारे लिए हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। और उस दिन के बाद हमारा क्लास कराने भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। बाबा ने एक कला भर दी। लास्ट पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा ही बाबा के साथ क्लियर रख के चलें। बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चलें। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि जब विनाश की अनेक हलचल की परिस्थितियां होंगी, एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो किस समय हमको क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल हो सके। वो वही हो सकेगा जिनकी बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ क्लियर रहेगी। अगर लाइन क्लियर नहीं है और समस्या आ गई तो फिर वहां प्रश्न उठेगा, अभी क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों प्रश्न उठ रहा है? बाबा ने तो सब कुछ बताया हुआ है। और बाबा ऐसा नहीं कि बाबा मेरे को ही टचिंग देता है, आपको नहीं देता है और किसी को नहीं देता, नहीं, हर बात की टचिंग बाबा हर बच्चे को देता है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि और बातों में, दुनिया भी और इधर उधर की व्यर्थ की बातों में उलझी हुई है तो हम उस टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा के साथ लाइन क्लियर नहीं है। और अगर लाइन क्लियर है तो एक सेकेंड में आपको टचिंग मिलेगी कि ये करो। अभी कल की परसों की बात बताऊं, मेरा स्वयं का अनुभव, मुझे शांतिवन जाना था, कुछ किससे मिलना था, कुछ सामान आया था और लेने के लिए जरूरी। तो मेरा नियम है कि मैं कमरे से जब भी बाहर निकलता हूं तो बाबा का जो फोटो लगा है उसको दो मिनट याद कर बाबा को बता के, बाबा मैं फलानी जगह जा रहा हूं इस काम के लिए, आप भी चलो साथ में ये कार्य कराएं। जैसे ही मैंने बाबा से छुट्टी ली तो बहुत बार का मेरा अनुभव है, जैसे छुट्टी लेता हूं तो अगर वो काम सहज होने वाला, लाइन क्लियर है, तो बाबा के फोटो से जैसे कि बाबा का हाथ ऐसा मुझे हिलता हुआ नजर आता है। तो उस समय मैंने जब बाबा को याद कर कहा कि मुझे शांति बन जाना है, तो पहले तो इस तरह से हुआ और फिर एक सेकंड के बाद ऐसे हाथ हिलना शुरू हो गए। इनका ये क्या बात, कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला है। लेकिन मैंने कहा हाथ तो हिलना शुरू हुआ तो माना जाना तो है, काम जरूरी था कुछ, मैं गया, इधर से चला गया, बरसात हो रही थी उस दिन भी, गए, गाड़ी मिल गई, चले गए। वहां से जब वापस आना था तो पता चला कि 9 बजे की बस शांतिवन से कैंसिल हो गई, बस नहीं जाएगी और बरसात फुल फोर्स की। तो इनका ये तो देखो बाबा ने जो टचिंग दी वो सही टचिंग दी, तो अभी क्या करे। तो बैठे रहे, इंतजार किया, पूछा मैंने कहा और कोई गाड़ी जाने वाली है, बोल ऊपर से आएगी एक गाड़ी तो जाएगी। फिर 1.5 घंटा इंतजार किया, फिर एक गाड़ी आई, उसमें बैठ के फिर ऊपर आए तो पता चला कि रास्ते में पत्थर गिर गया तो वहां रास्ता बंद है, उसी दिन गिरा था तो, लेकिन बंद तो हुआ रास्ता, लेकिन 1.5 घंटे के बाद फिर क्लियर हो गया। तो थोड़ा टाइम लगा, विघ्न आया, लेकिन फिर पहुंच गए। तो कहने का भाव ये है कि कहीं भी कुछ होने वाला है, अगर भगवान के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आपको सही समय पर सही टचिंग मिलेगी और वैसा करने में आप सफल हो सकेंगे। तो बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रहे हमारी, उसके लिए बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम कम है अभी में, तो दो बातें मुख्य रूप से उनको हम ध्यान देकर चलें। बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रखने के लिए दो बातें। पहली बात, तो एक तो हमारी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता के सागर के साथ हमें बुद्धि लगानी है तो उसकी याद एक जिस स्वच्छ और प्योर बुद्धि में ही ठहर सकेगी। अगर किसी प्रकार की गंदगी है, स्वच्छता है, तो वहां बाबा की याद नहीं रहेगी। और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखने के लिए अभी वापस घर जाने का समय आया है, तो हमें सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बनना है। कहीं भी किसी को जाना होता है, सब बैग बैगेज रेडी कर लेते हैं ना, है तो वो तो हुई स्थूल बात, लेकिन यहां हम बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि अब बाबा इशारे मिल रहे हैं, अंत का समय आकर पहुंच गया है, है? तो अब ज्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है, सबसे बुद्धि योग निकालकर सार स्वरूप बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालें, कर्तव्य नहीं निभाएं, सब कुछ करो, लेकिन उतना विस्तार करो कि आप जब चाहो उससे बुद्धि निकालकर बाबा में लगा सको। शायद वो विस्तार आपके बुद्धि योग तोड़ने का कारण ना बने। अब बुद्धि सदैव संपूर्ण पवित्र कैसे रहेगी, स्वच्छ पवित्र कैसे रहेगी, ताकि बाबा की याद निरंतर रहे या लाइन क्लियर रहे। तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन पवित्रता में संपूर्णता आ जाए उसके लिए सात बातों की आवश्यकता है। पवित्रता में संपूर्ण बनने के लिए सात प्रकार की पवित्रता की बातें संपूर्ण बनने के लिए जरूरी है, जो अव्यक्त बाप दादा ने बताई हुई है मुरलियों में, वही बात मैं बतला रहा हूं। तो संपूर्ण पवित्रता का पहला स्वरूप है स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता है तो उससे बुद्धि को पवित्र बनाने में, मेंटेन करने में, पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मन सा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उसी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्माचारी कहा जाता है, तो कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण निर्विकारिता अर्थात किसी विकार का अंश मात्र भी हमारे में ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो सूक्ष्म में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलसी, निंदा, परचिंतन, सुस्ती, आलस, छलविलप, माना जो भी नेगेटिव बातें हैं उनमें से एक भी हमारे अंदर है तो वो भी इम्प्योरिटी की लिस्ट में, अपवित्रता की लिस्ट में गिना जाएगा। तो किसी विकार का अंश मात्र भी ना हो उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथी बात, संपूर्ण पवित्रता का चौथा स्वरूप बाबा ने कहा एक व्रता बनना है। एक व्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप के सिवाय और कोई बुद्धि में ना आए, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, एक साकार मुरली में बाबा ने बात बताई कि अमृत वेले से रात्रि तक, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा ही समर्थ विचारों का स्वरूप बनके चले। सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संकल्प अथवा स्वप्न में भी, संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। इस तरह से इन सातों बातों को सामने रखते हुए हरेक अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना स्वतः ही हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और फिर कब हमको क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा अनुभव इसी पर, हम नेपाल गए थे भट्टी कराने के लिए, तो जब बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन वहां कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। हम भी पहुंचे तो हमारे को कहा वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब वहां भट्टी रखी है, नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर ही अंदर अपना सेंटर था, वहां भट्टी रखी है, 250-250 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, रिया कर रहे हैं वापस जाओ हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या आ गई ना, तो अभी क्या किया जाए। तो वहां खड़े खड़े ही मैंने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और सारी बात बाबा को बताई कि बाबा हम देखो नेपाल में वहां सेंटर पे भट्टी रखी है, हम यहाँ बॉर्डर पहुंचे हैं और मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाने देंगे, बॉर्डर बंद किया हुआ है, वापस जाओ, अभी मेरे को क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे बाबा को सारा समाचार बता के याद कर कहा, 2-3 मिनट वहां खड़े खड़े याद किए। 3 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिलती है कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है, तो और एक भाई थे हमारे साथ वहां के, तो मैंने कहा भाई जी ये मिलिट्री वालों को कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, तो उससे चल के बात करो। तो हम दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था, तो हम गए दोनों, तो कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए, उस भाई ने कहा, और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर हमारा आश्रम है, और वहां ये भाई माउंट आबू से आए हमारे, और इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-250 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल में जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। तो जो 2 मिनट के पहले ना हो गया 2 मिनट के बाद हाँ हो गई, कैसे, बाबा के साथ लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग ली और वैसा करके सफल हो गए। तो इस तरह से वर्तमान समय भी आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि हमें कब कहां क्या करना है, उसमें हम सहजी सफल हो सकें, तो उसके लिए बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।
ओम शांति। अभी छोटूलाल भाई ने हमें बहुत सुंदर शुभ भावना और संकल्प शक्ति के प्रयोग इसके बारे में बताया, सभी को बहुत इंटरेस्ट आया, सभी ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी, तो हम सभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करेंगे ही, तो इसलिए सभी की तरफ से उनका मन पूर्वक धन्यवाद करते हैं। तो सभी एक हाथ की ताली बजा के उनका धन्यवाद करेंगे। तो सभी 5 बजे फिर से यहाँ आएंगे, 5 से 6 बजे तक योग चलता रहेगा, और 6 बजे फिर राजू भाई का क्लास भी रहेगा, और शाम को डॉक्टर सचिव भाई का क्लास रहेगा, तो इसलिए कोई भी मिस ना करे। ओम शांति।